जानवी, पृथ्वी और कीर्ति अपनी जगह से खड़े होते हैं। सक्षम और प्रणाली भी आ चुके थे। वो लोग अरुणिमा को देखकर हैरान होते हैं, पर अरुणिमा किसी की तरफ नहीं देखती है और सीधे अपने पेट को संभालते हुए आस्तिक के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वो वहां से उसकी माँ के कमरे की चाबी लेती है और सीधे उसकी माँ के कमरे में चली जाती है। कुछ भी नहीं बदला था इस महल में। अगर कुछ बदला था तो वो थी अरुणिमा। अरुणिमा सीधे उसकी माँ के कमरे में जाती है और आस्तिक के बताए गए सारी बातें सच थीं। फोटो फ्रेम हटाने के साथ ही उसके पीछे से एक सीक्रेट लॉकर निकलता है। अरुणिमा ने कोड डाला और लॉकर ऑन हो गया। उसके अंदर से प्रॉपर्टी के पेपर्स, फोटोग्राफ्स की एल्बम और साथ ही उसकी माँ की पुरानी डायरी निकली थी। कुछ हिस्से जल गए थे, शायद आग लगने की वजह से, लेकिन बहुत हद तक इसे पढ़ने के लायक थी वो डायरी। अब तक सब उस कमरे में, प्रणाली और पृथ्वी भी आ चुके थे और सब हैरान हो गए थे। पृथ्वी अरुणिमा के पास आता है और कहता है, क्या बात है अरुणिमा, तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरुणिमा हताशा के साथ उन सबको देखती है और कहती है, मेरी माँ ने कुछ भी नहीं किया है, मेरी माँ बहुत अच्छी औरत है, आस्तिक झूठ बोल रहे हैं। प्रणाली ने जब अरुणिमा के हाथ में वो डायरी देखी तो उसकी आंखें छोटी हो गईं और उसने कहा, ये डायरी अब तक है, भाई के पास है, मुझे तो लगा ये उस आग में जल गई होगी। प्रणाली ने जब ये कहा तो सब उसे देखने लगे। प्रणाली सबको देखती है और कहती है, ये हमारी माँ की डायरी है। माँ अक्सर इस डायरी में कुछ ना कुछ लिखा करती थी, लेकिन क्या लिखती थी वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि माँ इस डायरी को हमेशा बंद ही रखती थी। जब हमारे घर में आग लगी तो मुझे लगा ये डायरी भी उसमें जल गई होगी, लेकिन ये भाई के पास थी और भाई ने इसे हम सबसे छुपा कर रखा था। पृथ्वी अरुणिमा के हाथ से वो डायरी लेता है और उसके पन्ने खोलता है। उसमें लिखे गए शब्दों को पृथ्वी उन सबके सामने पढ़ने लगता है और जैसे जैसे वो पन्ने पढ़ते जाता है, सबके दिल की धड़कन बढ़ती जाती है और सबकी सांसें जैसे रुकने को हो रही थीं। सीमा की डायरी। शुक्रिया जिंदगी, मैं बहुत खुश हूँ, आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है, इतना प्यारा परिवार दिया है, एक प्यार करने वाला पति दिया है, एक खुशहाल परिवार दिया है, अपनी जिंदगी में मुझे अब किसी से कोई शिकायत नहीं। आस्तिक और प्रणाली के बाद मैं अपने दो और आने वाले बच्चों के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा तो अभय इन बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। मुझे पता नहीं था कि अभय मुझसे इतना प्यार करते हैं। उसके बाद डायरी के कुछ पन्ने फटे हुए थे और उसके बाद आगे लिखा हुआ था, मेरे चार बच्चे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरा परिवार बिखर गया है। अभय मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे शक हो रहा है, अभय की जिंदगी में कोई दूसरी औरत है, उनका रवैया मेरे लिए बदलता जा रहा है और वो बच्चों के साथ भी अच्छे से पेश नहीं आते हैं। उसके बाद फिर कुछ पन्ने जले हुए और फटे हुए थे और उसके बाद कुछ सिर्फ लास्ट के पन्ने रह गए थे। ऐसा नहीं हो सकता है, अभय मुझे धोखा नहीं दे सकते हैं, उनका प्यार, उनका विश्वास, सब इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता है? अभय एक शारदा नाम की औरत के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है, वो उस शारदा के साथ चले गए हैं और मुझे और मेरे बच्चों को अकेला छोड़ गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा था इतने सालों से मैं जो देख रही थी वो सब एक झूठा था। मैंने अभय से सवाल किया था कि आखिर वो मुझसे कभी प्यार ही नहीं करते थे तो तुमने मेरे सामने प्यार का ये दिखावा क्यों किया? और अभय ने जो मुझसे कहा वो सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने मुझसे प्यार का दिखावा सिर्फ इसीलिए किया ताकि मेरे पापा का बिजनेस उन्हें मिल सके, क्योंकि मैं अपने पापा की इकलौती बेटी थी और शादी के बाद सब कुछ मेरा होता और मेरे बाद मेरे पति का होता। इसलिए उन्होंने मुझसे प्यार का झूठा नाटक किया और मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। मैं अपने बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़पट्टी वाले घर में रह रही हूँ। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरे पापा भी नहीं है इस दुनिया में और सारी प्रॉपर्टी भी अभय के नाम है। मैंने बहुत मिन्नत की कि वो मुझे कम से कम मेरी प्रॉपर्टी तो वापस कर दे, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया और वो औरत सीमा, उसे जरा भी शर्म नहीं आई मेरा घर तोड़ते हुए। वो पहले से शादीशुदा थी लेकिन अपने पति और बच्चों को छोड़कर उसने मेरे पति को अपने जाल में फंसाया है। मुझे बहुत समय बाद पता चला कि शारदा और अभय पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, लेकिन अभय की शादी मुझसे हो गई थी और शारदा की शादी कहीं और हो गई थी, लेकिन फिर भी उन दोनों ने मिलकर दो जिंदगियां, दो परिवारों को बर्बाद कर दिया। मैं एक छोटे से घर में अपने बच्चों को लेकर छोटी मोटी नौकरियां करती है। एक बार मैं बार डांसर की नौकरी करके मैं अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ, लेकिन इतने के बाद भी सीमा को चैन नहीं पड़ रहा। उसने मेरे पीछे एक आदमी को लगा रखा था जो हर बार मेरे बार में आकर मुझे परेशान करता है। मुझे उस आदमी से डर लगता था क्योंकि उसकी नीयत मेरे ऊपर साफ नहीं है। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, पर मुझे अपने बच्चों की फिक्र है। मेरा आस्तिक अकेला ये सब कैसे बर्दाश्त करेगा? कभी कभी मन करता है अपनी जान दे दूं, लेकिन अपने चारों बच्चों का चेहरा देखकर मैं कैसे अपनी जान दे सकती हूँ? हाल चाहे जितने ही बुरे क्यों ना हो, मैं कभी भी अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। और उसके बाद डायरी के पन्ने फिर चले हुए थे। अरुणिमा की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे और बाकी सबकी आंखों में भी आंसू थे। प्रणाली ने अरुणिमा को देखकर कहा, हमारी माँ ने हमें बहुत बुरी हालतों में पाला था, लेकिन वो कभी भी अपनी जान नहीं दे सकती थी, पर फिर भी हालातों ने उन्हें इतना तोड़ दिया कि उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। अचानक से अरुणिमा का सर चकराने लगा और वो बेहोश हो गई, लेकिन जानवी और कीर्ति ने उसे संभाल लिया था। जल्दी से अरुणिमा को लेकर नीचे हॉल में आते हैं और पृथ्वी अरुणिमा को चेक करता है। पृथ्वी ने कहा ये ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से और वीकनेस की वजह से अरुणिमा बेहोश हो गई है। सब लोग अरुणिमा के पास थे और उसकी परवाह कर रहे थे, लेकिन पृथ्वी के दिमाग में कुछ चल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये पजल का एक हिस्सा है जो कहीं गायब है और इस वजह से ये सारी कहानी उलझी हुई है। अब पृथ्वी को पजल का वो हिस्सा ढूंढना था। ये आधी कहानी जो अरुणिमा की तरफ से भी आधी थी और आस्तिक की तरफ से भी आधी थी, इसे पूरा करना था। इसलिए पृथ्वी ने सजाने की पहल करती थी। अब वो तब तक शांत नहीं बैठ सकता था जब तक कि सारी सच्चाई उसके सामने नहीं आ जाती। उनकी माँ के साथ क्या हुआ था और अरुणिमा के परिवार के साथ क्या हुआ था, जब तक ये सारी बातें सामने नहीं आ जाएगी तब तक पृथ्वी को चैन नहीं मिलेगा।